हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 74
वासुदेवस्य पाठस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पाठस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पाठस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पाठस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पाठस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पाठस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पाठस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। शब्दों का अर्थ देखिए। संजय उवाच, संजय ने कहा, इत्यहम इत मना इस प्रकार, अहम मना मैंने, वासुदेवस्य कृष्ण पाठस्य तथा पाठ यानी अर्जुन का च दोनों का इन दोनों का भी महात्माना जो दोनों महात्मा है संवादम वार्ता इमम इस प्रकार जो यह वार्ता जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है उसको अश्रुषम सुनी है। शुषम का मतलब होता है सुना है। और ये कैसी थी? अद्भुतम, ये तो बिल्कुल अद्भुत थी, आश्चर्यजनक थी। रोम हर्षणम, और जब मैं उसके विषय में सोच रहा हूँ तो मेरे रोम जो है वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अनुवाद देखिए। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अत्यधिक सुंदर वार्ता अब संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ। पुनः कृपया मंगलाचरण करिए ताकि हम इन अद्भुत वाक्यों को समझने का प्रयास कर सकें। गुरु और गौरंग की कृपा से इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः
श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभयस्य कृपा सिंधुव्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। आज श्रीमद् भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण के जो वाक्य हैं और अर्जुन के जो वाक्य पर डिपेंडेंट जो भगवत गीत था जो वो समाप्त हो गया है और हम फिर से हस्तिनापुर के महल में पधार रहे हैं जहाँ पर संजय और धृतराष्ट्र की वार्ता हो रही है। याद है श्रीमद् भगवद गीता का फर्स्ट श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र ने कहा था संजय से, क्या पूछा था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने एकत्रित होने के बाद क्या किया? तो अब तक संजय ये बता रहे थे कि क्या किया। पहले दुर्योधन के विषय में बता दिया कि वो अपने गुरु महाराज के पास गए और उनको बताया कि आपने कितनी नादानी की है दृष्टद्युम्न को शिक्षा देने के बाद। देखो उन्होंने कितनी अच्छी व्यूह रचना की है और उसके बाद शंख बज रहे हैं सबके। और उसके बाद पांडवों के विषय में पूछा था तो पांडव पुत्र अर्जुन ने जो कृष्ण के साथ वार्ता की, अब जो उन दोनों की वार्ता थी, उन दोनों का जो आपस में डायलॉग्स थे कृष्ण और अर्जुन के, और वो इतने उसके विषय में बता रहे आज संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना। अब मैंने वासुदेव और पार्थ ये दोनों महात्माओं के विषय में जो संवादम एवं अश्रुत, ये जो मैंने संवाद सुना है ना वो अद्भुतम रोमहर्षणम बहुत ज्यादा अद्भुत है। और अर्जुन और कृष्ण का जो वार्ता है वो मैंने जो सुना है उसमें मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो, रोमहर्षणम मेरे मुझे रोमांच हो रहा है बहुत ही, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र वाक्य है। तो ये संजय का कितना बड़ा सौभाग्य था कि वो भगवान के मुखारविंद से डायरेक्ट ये सुन रहा था, तो उसको इतना आनंदित हो रहा था। उसके विषय में बता रहे आज धृतराष्ट्र को श्रील प्रभुपाद जी सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यास देव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना सुफोरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की
विषय वस्तु कह सुना, यानी कि जो कुछ हो रहा था, अब क्योंकि उनके ऊपर गुरु अपने गुरु व्यास देव जी की कृपा थी, तो उनके दिए हुए आध्यात्मिक नेत्रों के जरिए, दिव्य दृष्टि के जरिए से उन्होंने ये सब कुछ देखा था और सुना था, और फिर वो कह सुनाया था धृतराष्ट्र को। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और ना भविष्य में पुनः होगी। बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जैसा वार्ता, यानी कि एक तो सबसे प्रथम जो गुरु है वो और प्रथम शिष्य श्रीमद् भगवद गीता का। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया चौथे अध्याय में कि मैंने ये सूर्यदेव को भी सुनाया, लेकिन वो इतना प्राचीन था कि वो जो लिंक था वो टूट गया था और परंपरा, लेकिन उसी परंपरा को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था और यह प्रथा जो स्टार्ट हुई थी। इसी के लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले कि दो महापुरुषों के बीच में ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता चले। आज जब हम सुनते तो भगवान श्री कृष्ण के वाक्य भगवान के मुख से और उसके परम प्रिय भक्त के को सुनाई दे रहे हैं और उनके प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो ये इतना आश्चर्यप्रद था ये संवाद जो था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही भविष्य में ऐसा होने वाला था। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीव आत्मा यानी अर्जुन से वर्णन कर रहे हैं, जो परम भगवत भक्त था। कितना सुंदर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के विषय में तो सब, अब उसके बाद जो भी भगवत गीता बोलेगा ना, वो बोलेगा भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवान है, ये कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हूँ, कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, कृष्ण कहते हैं मत्तः सर्वम मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगरा इव, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। किसने कहा? कृष्ण ने कहा। लेकिन उस टाइम पर जब अर्जुन को बता रहे थे तो कृष्ण क्या कह रहा था? मुझसे परे कोई सत्य नहीं है। कृष्ण स्वयं बोल रहा था अपनी विभूतियों के विषय में, अपने ऐश्वर्य के विषय में भगवान स्वयं बता रहे थे, यद्यत् विभूति मत् सत्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तरेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। कृष्ण स्वयं कह रहे थे तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सारा सौंदर्य सारा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के इस सफलिंग मात्र से निकल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में बता रहे थे यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् माया भूतं सराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। नन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषतुद्देशत प्रोक्तम् विभूतिर्विस्तरो मया। हे परन्तप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। स्वयं कृष्ण अपने ऐश्वर्य के विषय में वर्णन कर रहे थे। कितना अद्भुत लग रहा होगा जब कृष्ण स्वयं अपने भक्त को अपने विषय में वर्णन कर रहे होंगे। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे इसकी समझ में आता गया उसने वह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है वही वही विजय होती है। आगे संजय और उसके विषय में बता रहे हैं कि मैंने ये जो इतना पवित्र संवाद सुना वो किसकी कृपा से सुना। आगे संजय कहते हैं श्लोक नंबर 75 देखिए, व्यास प्रसादा चतुर्थम
एतत् कुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् कुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् कुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यासप्रसादाश्रुतवान् एतत् कुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यासप्रसादाश्रुतवान् एतत् कुह्यमहं वरम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् कुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् कुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। अर्थात् व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी हैं। आज संजय अपने गुरु महाराज की प्रशंसा करते हुए बता रहे व्यास प्रसाद श्रोतवान, ये जो मैंने जो भी सुना है, ये इतनी अद्भुत जो वार्ता मैंने कृष्ण और अर्जुन की सुनी है, उसका कारण केवल मेरे गुरु महाराज व्यास प्रसादात, प्रसाद मतलब कृपा, मेरे गुरु महाराज की कृपा से ही मैं सुनने के योग्य हुआ हूँ। केवल यदि मेरे गुरु महाराज मेरे पर कृपा ना करते तो आज मैं इससे योग्य नहीं होता, क्योंकि गुह्यात गुह्यतरम, ये जो बहुत ज्यादा गुह्य ज्ञान था वो मैंने, परम गुह्य ज्ञान मैंने सुना है, जबकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ये केवल अर्जुन के प्रति कह रहे थे, अपने भक्त अर्जुन, अपने प्रिय अर्जुन को बता रहे थे। लेकिन जब एक गुरु की कृपा अपने शिष्य पर हो जाती है तो भगवान के सीक्रेट भगवान के केवल अपने प्यारों को बता रहे थे, लेकिन जिस शिष्य के ऊपर अपने गुरु की कृपा हो जाती है तो वो शिष्य भी भगवान का प्रिय हो जाता है और भगवान के सीक्रेट समझने के योग्य हो जाता है, उनको सुनने के योग्य हो जाता है, उनको ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। लेकिन जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होती तब तक इसको समझ में नहीं आ सकता है। तो आज श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से तात्पर्य में समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास देव की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझा जा सकता है और कृष्ण को समझना चाहिए केवल गुरु के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। खुद से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते क्योंकि हम तत्वदर्शी नहीं हैं, हमारे इंद्रियों में दोष हैं, हमें इतने दोष हैं, बुद्धि पवित्र नहीं, हृदय पवित्र नहीं, हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें एक तत्वदर्शी, एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। देखो संजय ने आश्रय लिया कृष्ण व्यास जी का, जिसकी वजह से वो कृष्ण को समझ सके। इवन अर्जुन और कृष्ण आपस में मित्र थे, वो कभी कृष्ण को नहीं समझ सके जब तक कि उसको गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया। गुरु के बगैर कृष्ण को समझना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर व्यासदेव की बात आई, वरना तो वो बोलते थे कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझ पर जब मेरे गुरु महाराज ने कृपा की तब मैंने ये समझा है, वरना मैं नहीं समझ सकता। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण को समझने का माध्यम केवल गुरु महाराज है। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा की एक बहुत बड़ा रहस्य यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
गुरु स्वच्छ माध्यम होता है, यानी सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है भगवान तक आपको दिखाता है। जैसे यदि किसी की आंखें होती हैं, वो अगर उनका आईसाइट वीक हो जाता है तो फिर ऑप्टिकल लगाते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है उसका विजन क्लियर हो जाता है, उसको दिखाई देता है, लेकिन दिखाई उसी को दे रहा है। ये जो ऑप्टिकल उसने पहना है वो तो सिर्फ माध्यम है ताकि उसको सही तरह से नजर आए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु स्वच्छ माध्यम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसको देखने का, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष होता है, समझ में फिर भी खुद को आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि गुरु बीच में खड़ा हो गया वो उसको समझ में आ रहा है बाकी तुमको समझ में नहीं, आपको समझ प्रत्यक्ष अनुभव होता है भगवान का कि भगवान ऐसे हैं, भगवान को प्रेम करने का अनुभव। गुरु सिर्फ आपको वो तरीका बताते हैं, रास्ता बताते हैं, माध्यम बनते हैं कृष्ण और आपके दरमियान एक लिंक जोड़ने के लिए। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु परंपरा का यही रहस्य है, दिस इज द मिस्ट्री ऑफ डिसिपल सक्सेशन। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। यहाँ पर भगवान को योगेश्वर कहा गया कि योगम योगेश्वरात् कृष्ण। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं योगी तो बहुत हैं लेकिन उन समस्त योगियों के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है कि मेरी शरण में आ जाओ, जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। योगियों के लिए आदेश है योगेश्वर में हूँ और मेरी शरण में आ जाओ, और यही सर्वोच्च आदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ, और यही सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। जो योग ध्यान योग है छठा अध्याय उसका अंतिम श्लोक बहुत ही प्रिय मेरा श्लोक है और भगवान उसमें कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समीयुक्त तमो मत। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत ही श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और जो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। यानी जो योगी अलग अलग जगहों पर अपना ध्यान टिकाते हैं लेकिन वो तो योगी हैं लेकिन सर्वोच्च योगी की यहाँ पर बात हो रही है। भगवान कहते हैं कि वो समस्त योगियों में सर्वोच्च है, अत्यंत श्रद्धापूर्वक जो मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त होता है, वो सबों में सर्वोच्च है। तो इसी के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं कि योगी क्या है, जो भगवान की शरण ले लेता है, भगवान के विषय में सोचता है, भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान को संतुष्ट करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं छठे अध्याय में इसकी पुष्टि हुई। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं, है ना। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास देव जी के गुरु हैं। अतः व्यास देव अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो परंपरा से सुने। नारद ने किससे सुना, ब्रह्मा जी से सुना। ब्रह्मा ने किससे सुना, कृष्ण से सुना। अब कृष्ण ने ब्रह्मा को सुना है, ब्रह्मा ने नारद से सुना है, नारद ने व्यास देव को सुना है। ये लाइन से आ रहा है ना, जो पावर कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया वही वाला पावर नारद जी तक आया और नारद से व्यास और व्यास के बाद संजय। यहाँ पर क्या है, नारद के कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं क्योंकि वे परंपरा में आते हैं और संजय व्यास देव के शिष्य हैं, है ना। लाइन से जा रहा है ना, अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकें और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। ये गुरु परंपरा की, श्री प्रभुपाद जी गुरु परंपरा का महत्व बता रहे हैं कि जो परंपरा कृष्ण से स्टार्ट होती है तो जो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं ना वो परंपरा के थ्रू आपको मिलता है डायरेक्ट से। जैसे एक बहुत ही ऊंचा दरख्त हो उसपे अगर बहुत ही खूबसूरत फ्रूट्स मैंगो लगे हुए हो तो अगर डायरेक्ट से आप उसको पत्थर मारोगे तो गिरेगा तो फट जाएगा, उसका पूरा रस बिग निकल जाएगा और मट्टी में धूल में खराब हो जाएगा, लेकिन यदि लाइन से क्रमबद्ध कोई खड़ा होगा, पहले किसी को पहला वाला किसी को देगा, दूसरा किसी को देगा, तीसरा किसी को देगा, ऐसे करते करते जो फर्श पर खड़ा होगा ना उसको एज इट इज मिलेगा, उसमें कोई गंदगी नहीं होगी, कोई खराबी नहीं होगी एज इट इज को, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट तरीके से संरक्षित सुरक्षा के साथ उसको पहुंचाया गया है। तो ये होती है गुरु परंपरा, क्योंकि वो डायरेक्ट से उसको, क्योंकि गुरु की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो गई थी और कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतः जहाँ तक भागवत गीता समझने का प्रश्न है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी देखो कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि अगर आप गुरु परंपरा में नहीं हो, अगर आप खुद से कृष्ण को समझना चाहते हो, किसी गुरु का सहारा नहीं लेते हो, किसी प्रमाणिक गुरु का आश्रय नहीं लेते हो और खुद से समझना चाहते हो तो ये संभव ही नहीं है। विशेषतः भागवत गीता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ जिसमें भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि भाई आपको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, भगवान ही ये सब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब जो भी है भगवान श्री कृष्ण उनके स्रोत है। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। क्यों? क्योंकि प्रमाणिक गुरु की शरण में था। तो जो प्रमाणिक गुरु की शरण में है, क्योंकि संजय प्रत्यक्ष वहां पर था नहीं, लेकिन क्योंकि गुरु की कृपा से वो वहां पर बैठे बैठे भी वही चीज एज इट इज समझ सका। तो प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली अर्जुन था, उसी प्रकार व्यासदेव भी अपने गुरु महाराज की कृपा से उसको समर्थ हो सका उसको समझने में। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि आप कृष्ण से डायरेक्ट, कोई बोलता है ना कि भाई हमें अक्सर लगता है कि हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि डायरेक्ट से कृष्ण को समझ सके, क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा भाग्यवान था कि उस वो तो डायरेक्ट से भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से ये पवित्र वचन, पवित्र अमृत को ग्रहण कर रहा था, लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमारी दुविधा को दूर करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने में एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। यदि हम श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से एज इट इज सुन रहे हैं तो फिर उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो परंपरा से आया हुआ गुरु हमें एज इट इज बताता है और हमें एज इट इज समझ में आता है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है, अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव करते हैं। यहाँ पर व्यास पूजा के विषय में श्रील प्रभुपाद जी बोलते कब होनी चाहिए, कोई यहाँ पर दिन नहीं बताया है कि ये गुरु पूर्णिमा के दिन होती है या किस दिन होती है। साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं वैदिक पद्धति के अनुसार गुरु के जन्म दिवस पर, जिस दिन आपके गुरु महाराज का जन्म दिन होता है, उस दिन शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु महाराज व्यास देव के प्रतिनिधि होते हैं, व्यास देव के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए गुरु शिष्य जो है गुरु की व्यास पूजा करते हैं। और गुरु जिस आसन पर बैठते हैं उसको भी व्यास आसन कहते हैं। वास्तव में वो व्यास देव का आसन होता है, लेकिन ये व्यास देव की कृपा होती है कि वो अपने शिष्यों को, यानी कि जो उनके जो व्यास आसन पर बैठता है उसका ये फर्ज होता है कि केवल व्यास देव जी के वचन ही बोले, यानी कि वो प्रतिनिधि होता है व्यास देव का, इसलिए उसको व्यास देव के ही वचन बोलने होते हैं। तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि ये मेरे गुरु महाराज की कृपा थी कि मैं इतने अद्भुत वचनों को, भगवान और श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महात्माओं के इन वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका, जिससे मुझे रोमांच हो रहा है। तो यदि किसी के ऊपर किसी परंपरा के शुद्ध गुरु का हाथ रख देता है, कोई शुद्ध गुरु अपनी शरण में ले जाता है, तो वो कृष्ण को साक्षात उसी तरह से समझ सकता है जितना कि
कृष्ण स्वयं खुद को समझाते हैं क्योंकि वो परंपरा से आया होता है, तो हम सबका सौभाग्य है कि हम उसी परंपरा से जुड़ी हुई कड़ी हैं जो कि हमें एज इट इज ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी संजय इस वार्ता के विषय में कुछ बताएंगे जो कि हम कंटिन्यू करेंगे कल। हरे कृष्ण।